St. John, the 11th chapter, beginning with the 18th verse.
संत योहन्ना के 18वां अध्याय से आरंभ करते हुए पढ़ना चाहता हूँ.
Now Bethany was
बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे.
मार्था
यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही. मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि न मरता. और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा. यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा. मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा. क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है. अब यहाँ देखना. यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु आया है और तुझे बुलाता है. अब आइए प्रार्थना करें. हमारे स्वर्गीय पिता, इन वचनों को हमारे हृदय में पक्का करें. जैसा हम अब आप पर रुके हुए हैं, तेरा वचन है, तेरा सेवक, तेरा लेख, सब कुछ तुझे समर्पण है. यीशु मसीह के नाम में आमीन. आप बैठ सकते हैं. मेरा यहाँ पर होने का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों की सहायता करने की कोशिश करना है, न कि हम इस हद तक प्रार्थना करें और बीमारों पर हाथों को रखना, लेकिन वे हमारे बीच में यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को पहचान सके. हम आज रात इस विषय पर बोल रहे हैं, तब यीशु ने आकर और बुलाया. अब इस समय पर जिस पर हम बोल रहे हैं, यह एक बहुत ही दुख की घड़ी थी. यदि आपने कभी हमारे प्रभु की कहानी को पढ़ा है, हम देखते हैं कि वह इस लाजरस नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा मित्र था. वो उस यूसुफ से दूर जाने के बाद या उसे छोड़कर वो मार्था और मरियम लाजरस के साथ रहने के लिए आया, और वे अच्छे मित्र थे. उनके पास वो उनके लिए एक अच्छा पास्टर के समान था, एक सच्चा मित्र था. और उसके पहनने के लिए कुछ एक अच्छे वस्त्र को बनाया था, एक पहनने के लिए अंग रखा. मैं विश्वास करता हूँ वे दावा करते हैं, और ये वस्त्र पूरी तरह से बिना जोड़ का बुना हुआ था. तब उन्होंने उसके लिए उन चीजों को बनाया था क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया था. यह उनका विश्वास था और इसे देखा था. उन्होंने कलीसिया और इत्यादि को छोड़ दिया था ताकि उसका अनुकरण करे, और उस दिन के लिए यह एक बड़ी बात थी जिसके लिए शायद मृत्यु जुर्माना हो सकती थी कलीसिया और इत्यादि से दूर रहने पर. लेकिन यीशु, यह व्यक्ति यहाँ वहाँ जाकर जैसे उन्होंने दावा किया था उनकी कलीसियाओं को तोड़ रहा है, और उनके याजक और इत्यादि लोगों के बारे में गलत बात को कह रहा है. उन्होंने सोचा उसने उनका बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और यहाँ तक उसको स्वीकार करना उनको उनके यहूदी धर्म संबंधी भवन से बाहर कर देगा. और यदि आप कलीसिया से बाहर हो जाते हैं तो वे सोचते हैं उनके पास छुटकारे का कोई मौका नहीं था. यदि आपका उनके किसी एक संप्रदाय से संबंध नहीं है, जैसे फरूसी और साधुसी और या कोई भी हो, उनका कोई भी छुटकारा नहीं है यदि आप बाहर है तो. और यदि उनके पास अधिकार था, वो चाबी है, और वे आपको लात मारकर बाहर कर देंगे यदि वे चाहें तो. यह उनका अपना कहना है, कोई आश्चर्य नहीं. यीशु ने कहा, तुम तुम्हारे रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर के वचन को बेअसर कर देते हो. देखा, और अब यह फिर से दोहराया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं इतिहास अक्सर अपने आप में दोहराया जाता है. और यह कहते हुए बहुत ही दुख होता है, लेकिन इसके दोहराने की भविष्यवाणी की गई थी और इसे फिर से किया जाना था. हम देखते हैं यीशु के बारे में सोचा नहीं था. बहुत सी बार लोग मनुष्य का न्याय करना चाहते हैं जो उनके साथ सहमत नहीं होते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है. हम एक दूसरे के साथ असहमत हो सकते हैं, फिर भी मित्रता पूर्वक बने रहें. यदि मैं एक व्यक्ति के साथ ऐसे असहमत नहीं हो पाता हूं और फिर भी उससे प्रेम करता हूं और उसके लिए प्रार्थना करता हूं और उससे वचन के आधार पर उसके साथ असहमत हूं और बेहतर शिक्षा के लिए, तब मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा. मैं मित्रता पूर्वक हमेशा ही उसके साथ सहमत होना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं निश्चय ही उसे खोना नहीं चाहूंगा और उसे भी मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए, हम होना नहीं चाहेंगे। और हमारे विचारों की बुनियाद को जो वचन कहता है उस पर होना है। वचन को सच्चा होने दे, ना ही हमारी संस्था को या जो हमारे विचार हैं, लेकिन जो वो कहता है, हमारे कुछ व्यक्तिगत अनुवाद नहीं, केवल जो वचन ने कहा है। एक रात को मैंने कुछ तो किया और यह लगभग अपवित्र जैसा दिखाई दिया। मैं सोचता हूँ यह एक सुबह सेवकों के नाश्ते के समय पर हुआ था। मैंने यीशु को एक मुकदमे पर रख दिया। मैंने कहा, वैसे ही जैसे उन्होंने तब किया था, बिल्कुल वैसे ही वे आज करते हैं। हो सकता है यह अच्छा होगा यदि मैं कुछ समय के लिए फिर से दोहराऊं, तो यदि हमारे पास समय है तो। अब मैंने कहा, हम आज देखते हैं कि लूथर के सुधार करने के समय पर वो उसने कहा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो मनुष्य विश्वास करता है, उसके पास ये है। लेकिन हमने देखा उनमें से बहुतों ने कहा उन्होंने विश्वास किया और उनके पास यह नहीं था। जॉन वेस्ली के दिनों में यदि उनके पास दूसरी आशीष थी, उन्होंने इसे पवित्रीकरण कहकर बुलाया, संपूर्ण पवित्रीकरण। वे खुश थे और उन्होंने चिल्लाया, हर एक जन चिल्लाया, ये था। लेकिन उन्होंने पाया उनके पास यह नहीं था। उनमें से बहुतों ने चिल्लाया था और ये नहीं था। पेंटिकॉस्ट के दिनों में उन्होंने कहा, अब दान वरदानों को लौटाया जाना आ गया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो जो अन्य भाषा में बोलता है, उसके पास ये है। हम पाते हैं कि बहुत से लोगों ने अन्य भाषा में बोला और उनके पास यह नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, तो ठीक है, आत्मा का फल यही है वो। ओह नहीं नहीं, आत्मा का फल नहीं है, मसीह विज्ञान के पास ये है, जहाँ पर मुश्किल से ही प्रेम वो आत्मा का फल है। तब तो उनके पास दूसरे किसी से भी अधिक प्रेम है और यीशु मसीह की जैविकता का इनकार करते हैं। वे केवल उसे एक नबी कहकर बुलाते हैं, बस एक साधारण सा व्यक्ति, देखा, इसलिए यह ऐसा नहीं करता है। मैं एक मिनट के लिए इस एक सवाल को पूछता हूँ। आइए यीशु को मुकदमे पर रखें और इस मंच पर परमेश्वर मुझे इस कथन के लिए क्षमा करे, लेकिन मैं एक मिनट के लिए उसके विरोध में होना चाहता हूँ, केवल आपको उजाले में लाने के लिए, समझे। अब मेरे पास आज रात आप लोग हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं वापस उस दिन में जाऊँगा जब यीशु नाजरीन धरती पर था। मैं आपके पास आता हूँ और इस यीशु नामक नाजरीन व्यक्ति के विरोध में होने का जो कारण है। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहता है वो प्रेम है, तो ठीक है। और वो प्रेम आत्मा, सहनशीलता है, संयम, दीनता और इत्यादि, और प्रेम है। अब मैं कहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम उस बात को लेंगे जो हम जानते हैं, एक मसीहत। आपके इस प्राचीन याजक की ओर देखें, उसका पूर्व 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 पिता याजक था। उसे एक याजक होने के लिए लेवियों की वंशावली से आना था। अब हम देखते हैं कि उस याजक के पास जवान पुरुष के जैसा जीवन नहीं होता है, जैसे आप बाकी लोगों के पास होता है। वो क्या करता है, वो अपना खुद का बलिदान करता है। वो वहाँ ऊपर होता है जिससे कि वो वचन का अध्ययन कर सके, जो परमेश्वर का वचन है। वो इसमें से होकर जाता है दिन और रात, जिससे कि वो इसके हर एक शब्द को जान सके। उसे पत्री में के हर एक वचन को जानना होता है, उसे इसे हृदय से जानना होता है, उसे इसके बारे में कुछ तो जिसे उसे जानना जरूरी है। और फिर इसके अलावा, जब तुम्हारे माता और पिता ने विवाह किया था, किसने उन्हें पति और पत्नी होने के लिए जोड़ा था? तुम्हारे धार्मिक प्राचीन याजक ने। ये कौन था जो तुम्हारे पिता के पास आया था जब वो आवश्यकता में था और कुछ पैसों की उसके खेती के लिए आवश्यकता थी, जो उसके लिए गिरवी रखने जा रहा था? कौन उसके साथ खड़ा था? आपका सज्जन प्राचीन याजक। उस कमरे में जब तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने जा रही थी, कौन खड़ा था? वो सज्जन प्राचीन याजक। तुम्हारे पास कौन आया जब तुम बीमार थे और आवश्यकता में थे? तुम्हारा सज्जन प्राचीन याजक। ये कौन था जिसने तुम्हें आशीषित किया और तुम्हें परमेश्वर को सौंपा था और आठवें दिन तुम्हारा खतना किया? आपका सज्जन प्राचीन याजक। तुम्हारे माता पिता तलाक देने पर थे, कौन उन्हें एक साथ लेकर आया और उन्हें एक साथ किसने बांधे रखा? आपका सज्जन प्राचीन याजक। जब तुम्हारे पड़ोस में परेशानी थी, किसने इसे संभाला? तुम्हारा सज्जन प्राचीन याजक, निश्चय ही। अब ये सज्जन प्राचीन याजक जानता है कि बाइबल ने कहा कि परमेश्वर को बलिदान के लिए एक मेमने की आवश्यकता होती है। आप में से बहुत से लोग व्यापारी हैं, इसलिए आप भेड़ को बढ़ाते नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर को एक भेड़ की आवश्यकता है। वे कुछ दुकानों को वहाँ पर लगाते हैं जिससे कि वे व्यापारी लोग वहाँ पर जाकर इसे खरीद सके, उनके प्राणों के लिए एक बलिदान को भेंट चढ़ाएं, जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता है। ये जवान व्यक्ति जो यीशु कहलाता है, उसने क्या किया? वो कहाँ से आया था? बताया गया था वो एक कुंवारी से जन्मा है। किसने इस तरह की बेहुदा बात को सुना है? हम जानते हैं उसकी माँ के पास वो था, इससे पहले वो और यूसुफ जन्मे थे, या उसने और यूसुफ ने विवाह किया था, उसका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं उसका नाम आरंभ ही से खराब था। उसके पास कौन सी सदस्यता का कार्ड है? यदि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो कौन से झुंड के साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारे याजक ने अध्ययन किया उस वचन को जानने के लिए यहाँ पर वो आकर उसे तोड़ने लगता है जो उसने बनाया था, तुम उसे क्या कहोगे? परमेश्वर? निश्चय ही नहीं। अब एक दिन की बात है, जब तुम्हारे याजक ने वहाँ पर एक स्थान को बनाया, उस जहाँ से तुम एक बलिदान को खरीद सकते हो, इस जवान पुरुष ने क्या किया? सज्जनता, उसने मारा, कुछ रस्सियों को एक साथ किया, कुछ पट्टों को और कुछ चमड़े को इकट्ठा करके, और लोगों की ओर गुस्से से देखा, उन मेजों को उल्टा कर दिया और मार कर बाहर कर दिया। और तुम उसे आत्मा के फल कहते हो जो उनकी ओर गुस्से से देख रहा था? और देखो, मनुष्य को यहोवा की आराधना करने के सौभाग्य से वंचित कर रहा है। वे व्यापारी उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसने मेमनों को नहीं चढ़ाया, वो वहाँ इसे खरीदने के लिए नहीं गया, और वह इसकी ओर मुड़कर और उन्हें लताड़ दिया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। किसके पास वहाँ पर आत्मा का फल है? देखा, आप वहाँ पर हैं। देखो, यह आत्मा का कोई फल नहीं है, ना ही अन्य भाषा में बोलना है, ना ही चिल्लाना है। आप कहते हैं, तब भाई ब्रैनम, प्रमाण क्या है? वो क्या प्रमाण है? उस घड़ी में वचन का प्रमाणित होना। उनके पास बाइबल थी, वह बिल्कुल वही था जो यहोवा ने कहा कि होगा। इसकी कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, इसका वहाँ अनुवाद हुआ। वहाँ पर तुम्हारा याजक था, उनके पास वो सब था और हर चीज भी नियमित थी, सब कुछ था, फिर भी वचन को देखने से चूक गए और उसने उस युग के लिए वचन को पूरा किया। यही उस युग का प्रमाण है। लूथर के पास उसके युग का प्रमाण था, वेस्ली के पास उसके युग का प्रमाण था, पेंटिकॉस्ट के पास उसके युग का प्रमाण था, लेकिन हम दूसरे युग में हैं। वह बातें अच्छी हैं, लेकिन जैसे उस बालक को उंगली होती है, एक आंख, एक नाक, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक मनुष्य जाति बन जाता है। उसे एक तैयार बालक होना है, तब उसका जन्म होना है, एक प्राण होना है, शरीर, आत्मा, जिससे वो आगे बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं, ये सब यीशु ने कुछ ही देर में इसकी घोषणा कर दी थी, बस उनके लिए जिसे उसने जीवन के लिए ठहराया था, उसे देखा, ना ही बड़ी भीड़। उसकी भीड़ कभी भी कैफा के भीड़ के जैसी नहीं थी, क्योंकि कैफा सारे राष्ट्र को इकट्ठा करके बुला सकता है। यीशु ने कुछ लोगों को ही बुलाकर इकट्ठा किया, बहुतों ने उसे नहीं जाना। हजार गुना हजार, जब वो धरती पर आया था, वो धरती पर से होकर गया और उन्होंने कभी जाना भी नहीं कि वो यहाँ धरती पर था। वैसे ही यह फिर से होगा, वह उन्हें बुलाने के लिए आएगा जो जीवन के लिए बुलाए गए हैं। वह जानता है किसे जीवन के लिए बुलाया गया है, और वो ना ही यह उसका काम है कि वो उनका ध्यान रखे। अब हम ये ध्यान देते हैं, तब वे कलीसिया से बाहर आ गए और उन्होंने उसका विश्वास किया था। हर एक चीज जो वचन उसके बारे में बता रहा था, वहाँ वो था। और एक दिन उसने उनके घर को छोड़ दिया। मैं इन तीन चीजों के बारे में बोलना चाहता हूँ। यीशु छोड़कर चला गया, मृत्यु का आना था और सारी आशाएं चली गई थी। मैं कुछ मिनटों के लिए इन तीन चीजों पर बोलना चाहता हूँ। यीशु छोड़कर चला गया, और जब वो चला जाता है, परेशानी अंदर आ जाती है। अब जब वो आपको छोड़ देता है, या आपके घर को जहाँ पर आप रहते हैं, परेशानी अपने मार्ग पर होती है। शैतान को एक खुला द्वार मिल जाता है जब यीशु चला जाता है। वह चला गया था, और जैसे ही वो चला गया, तब वहाँ पर मृत्यु आ गई। और जब यीशु बाहर निकल जाता है, मृत्यु आ जाती है। उससे अलग होना मृत्यु है, इसलिए मृत्यु आ गई जब यीशु चला गया था। और मृत्यु लाजरस के लिए रुकी हुई थी, और तब वो एक जिस पर उन्होंने विश्वास किया और प्रेम किया, उन्होंने उसे बुलवाकर भेजा ताकि वहाँ आकर लाजरस के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि उन्होंने उसे देखा था और जानते थे कि वो परमेश्वर को जानता है, कि जो कुछ वो परमेश्वर मार्था ने वहाँ वापस व्यक्त किया, जो कुछ भी तू परमेश्वर से अभी कहेगा, परमेश्वर इसे करेगा। मार्था ने पहचान लिया था कि वो और परमेश्वर एक थे, वह उस घड़ी का वचन था, तो उसने पहचान लिया था, और वह जानती थी यदि वो कभी भी उसके संपर्क में आ सकती है तो। लेकिन वह चला गया था और वह उसे नहीं रोक सके थे, और उन्होंने उसे बुलवा भेजा, और वो वहाँ पर आने की बजाय और आगे चला गया, और उन्होंने उसे फिर से बुलवा कर भेजा, और वो आने की बजाय और आगे चलता गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, लेकिन क्या वचन ये नहीं कहता, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। यदि वो देर करता है, कोई बात नहीं, वो जानता है वो क्या कर रहा है। वहाँ पर एक उद्देश्य था। हम देखते हैं कि उसने संत यूहन्ना 5:19 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप में कुछ नहीं करता है, लेकिन वो पिता को जो करते हुए देखता है। पिता ने उससे वहाँ से दूर चले जाने को कहा था, और उसे बहुत दिनों के लिए दूर रहना था। दिनों के समाप्त होने के बाद तब उसने कहा, जो उसने तब कहा था, हमारा मित्र लाजरस सो रहा है, और उसने कहा तो ठीक है, वह भला करता है। उसने कहा वह मरा हुआ है और तुम्हारे कारण मैं प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वे उसके वहाँ पर आने के लिए कोशिश कर रहे थे ताकि उसे चंगा करे या कहे बताए क्या करना था, लेकिन वो जानता था उसे क्या करना होगा, इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया जिसके लिए वो ठहराया गया था, वो दूर रहे। यदि आप ध्यान दें कि कब्र पर जब वो वापस आया, उसने व्यक्त किया कि जब वो वापस आया और इस घर को पाया, सारी आशाएं जा चुकी थी, लाजरस मर गया था, हर एक घड़ी वे लगातार सोच रहे थे, शायद हो सकता है वह दृश्य पर आ जाए, शायद हो सकता है वह दृश्य पर आ जाए, वो शायद वापस आ जाए। अतः लाजरस मर गया, सांस उसमें से निकल चुकी थी। वो बाहर निकल आए, उसे लेप लगाया, उसके शरीर से लहू को लेते हुए उसे सन्न के कपड़ों में लपेट दिया, मसालों को लगाया और उस पर लेप लगाया और उसे कब्र के अंदर रख दिया। उन दिनों में दफनाने के लिए एक जमीन में खड्डा होता है, हो सकता है उस चट्टान में कब्र के ऊपर पत्थर को रख दिया, जो कि एक प्रथा थी। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन गुजर गया, वह मनुष्य कब्र में पूरी तरह से सड़ गया था, उसकी नाक हो सकता है अंदर चली गई थी। मैं सोचता हूँ वही वो पहली चीज है जो धसने लगती है, वो नाक होती है, और वो पूरी तरह से सड़ चुका था। उसकी देह धरती की मिट्टी में वापस जा रही थी या वापस मिल रही थी, उसका प्राण कहीं पर तो 4 दिनों की यात्रा में उससे दूर चला गया था। सारी आशाएं जो कभी उसके फिर से आने के लिए देख रही थी वो जा चुकी थी, और फिर सारी आशाएं जा चुकी थी, वे रुके हुए थे, और हो सकता है यदि वो पहले दिन आ जाए, दूसरे दिन नहीं, तब वो मर गया और वह वापस नहीं आया था, तब व्याकुलता वहाँ पर आ गई थी। कुछ समय के बाद वहाँ निश्चय ही किसी ने तो आकर उससे कहा, गुरु बाहर आया है, यहाँ मार्था उस रास्ते की ओर निकलती है, यीशु उस अंधकार की घड़ी में आता है जब आशा चली जाती है, यही है जो अक्सर होता है जब वो आता है। देखा, वो आता है उसी अंधकार की घड़ी के समय पर, तब यीशु दृश्य पर उपस्थित हुआ था। अब ध्यान देना, उसने आकर मार्था को पुकारा, उसकी उपस्थिति ने नई आशा को लाया था। कोई परवाह नहीं वो लड़का मर गया था, उसकी उपस्थिति ने नई आशा को लाया था। मेरे मित्रों, आज रात हो सकता है यहाँ पर आप बैठे हों जब डॉक्टरों ने आपको उस कैंसर से छोड़ दिया हो, आपके हृदय की तकलीफ से, हो सकता है आप एक पहिए वाली कुर्सी पर अपाहिज बैठे हों, सारे विज्ञान ने कहा हो वहाँ पर कोई आशा नहीं है, जमा हुई कैल्शियम आपके हड्डियों में गाड़ कर चुकी हो, अब तुम उन्हें मोड़ नहीं सकते हो, या आपके हृदय की स्थिति खराब है, डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी भी मिनट में जा सकते हैं। ओह, और बड़ी संख्या के लोग जो कैंसर या टीबी के साथ हैं, हो सकता है आपके पास वो अंतिम आशा हो, और यह ऐसा दिखाई देता है जैसे डॉक्टर ने आपसे मुंह को मोड़ लिया हो, फिर भी उसकी उपस्थिति का होना और यीशु मसीह की उपस्थिति को पहचानना आपके अंदर फिर से आशा को लाते हैं। कोई भी आपको उसी प्रकार का नाम बता सकता है, हो सकता है आपने इससे पहले कभी भी इसे नहीं सुना हो, लेकिन कोई तो कहता है मैं जानता हूँ वहाँ पर एक कलीसिया है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जल्दी करें, आप मरने पर हैं, देखो नई आशाएं खिलने लगती हैं। यह हमेशा ही ऐसे होता है, उस अंधकार की घड़ी में जब अक्सर कोई तो इसके बारे में कुछ तो कहता है, आपको इशू के बारे में बताता है, उसकी उपस्थिति नई आशा को लाती है। हो सकता है यह आज रात उसी बात को करे जैसे इसने पिछली रात्रि को किया था, जब हम प्रमाणित वचन को किसी भी संदेह की छाया के उस पार देखते हैं, जिसे प्रकट और साबित किया गया है कि वो यीशु जो 1900 वर्ष पहले जिया था, जो कलवरी पर मर गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और उन चेलों को दिखाई दिया और उनकी आंखों को खोला और उस दिन की प्रतिज्ञा को किया, जो ठीक आज रात अब हमारी उपस्थिति में है। यह बाध्य है जो लोगों के लिए आशा को लाती है, नई आशाएं ऊपर आ जाती हैं। हो सकता है किसी ने कहा हो, कलीसिया कुछ समय के लिए एक तरह से सूखी पड़ी हुई है, हमारे पास कुछ महीनों के लिए कोई भी अच्छा ताजा जल नहीं था और हमारे पास कोई बेदारी नहीं थी, ऐसा दिखाई देता था हर एक जन पूरी तरह से बेपरवाह हो गया है, या कुछ तो और ही, हम बस कलीसिया जाते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं और कुछ संदेशों को सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अचानक ही जब हम सूखा पड़ना आरंभ होने लगते हैं, तब यीशु दृश्य पर आ जाता है, हमें जागृत करता है, हमारे लिए कुछ तो नया लेकर आता है, वो हमेशा ही ऐसा करने के लिए वहाँ पर होता है। नई आशाएं आने लगती हैं जब यीशु आता है, उसकी उपस्थिति नई आशा को लाती है। वह जानती थी कि वह परमेश्वर का प्रकट हुआ वचन था। उसने उस युग को देखा था, या नहीं देखा होता तो वह अभी संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई होती थी। वह अभी भी कलीसिया के साथ संबंध रखती थी, लेकिन उसने प्रतिज्ञा किए हुए वचन को देखा था। उसने उस प्रतिज्ञा किए हुए वचन को उसके द्वारा प्रकट होते हुए देखा था, और वह जानती थी कि वह वही वो जीवित वचन था। और जब उसने इसके बारे में सुना, उसने परवाह नहीं की कि कितने लोग उसकी निंदा कर रहे थे। जो कुछ भी है, उसने उसके लिए अपने आप को बाहर निकाला जितना जल्दी वो निकल सकती थी। देखा, वो जानती थी वही वो प्रकट हुआ वचन था, कोई संदेह नहीं। लेकिन जो उसने एलिय्याह के दिनों की कहानी को पढ़ा था, अब वो उस दिन का परमेश्वर प्रकट हुआ वचन था। वह एक नबी था, और प्रभु का वचन नबी के लिए आता है। और वहाँ पर एक स्त्री थी जिसके पास एक छोटा बालक था, जिसे उस नबी के आशीष के द्वारा प्राप्त किया था, और उसके पास बालक था। एक दिन लगभग 11 बजे की बात है, उसे निश्चय ही सूरज की तेज गर्मी लग गई थी। वह पिता के साथ खेत पर था। बाइबल इसे नहीं बताता है, यह कहता है उसे तेज सूरज की गर्मी लगी थी, लेकिन उसने चिल्लाना आरंभ किया, मेरा सर, मेरा सर। लगभग दिन के 11 बजे थे, और उसके पिता का एक दास था जो उसे घर लेकर गया। वो दोपहर तक अपनी माँ के गोद में पड़ा रहा, और बीमार होता गया, और अंत में वह चल बसा। और अब उसके निराश होने की बजाय वे सारे पड़ोसी आकर चीखने चिल्लाने लगे, और ऐसा ही करते रहे। लेकिन वो माँ बुद्ध बनी बैठी थी, उसका बालक मर गया था। वो उसे छोटे से कमरे में लेकर गई, जिसे उसने उस नबी के लिए बनाया था, और उसे इस तरह से उसके खाट पर सुला दिया। और उसने दास से कहा, मुझे खच्चर पर ला दो, और तुम सीधे चलते जाना, और तुम तब तक नहीं रुकना जब तक मैं तुम्हें नहीं कहती हूँ। ओ प्रभु, ऐसा ही है, हमारे पास वाद विवाद करने और बहस करने का समय नहीं है, इससे दिन निकल जाता है। आओ आगे बढ़ें, हमें वहाँ पर पहुँचना है, हमारी एक जरूरत है। तो उसने कहा, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी सवारी को धीमा मत करना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं। और वह चलते रहे जब तक वे एलिय्याह तक न पहुंच गए। एलिय्याह परमेश्वर का एक मनुष्य हुआ था, मसीह के जैसा नहीं, मसीह सारी बातों को जानता था, क्योंकि वह परमेश्वर था। एलिय्याह परमेश्वर का एक भाग था, और वो मसीह ही एलिय्याह में था, और वह उस घड़ी का संदेश था, क्योंकि प्रभु का वचन उस घड़ी के लिए उस नबी के साथ था। यीशु उन सारे नबियों की संपूर्णता था, उसमें से हर एक जन ने केवल उसे ही प्रकट किया। ऐसा ही है, वहाँ यूसुफ से लेकर वो 30 चांदी के सिक्के, हर कहीं उसने मसीह को चित्रित किया। वैसे ही मूसा ने भी चित्रित किया। दाऊद वहाँ उस पहाड़ी पर एक ठुकराए हुए राजा के जैसा बैठा हुआ रो रहा था, क्योंकि उसे ठुकराया गया था। 800 वर्षों के बाद दाऊद का पुत्र पहाड़ी पर बैठा हुआ था, जो मसीह की आत्मा वहाँ दाऊद में थी, और वह प्रभु, वो दाऊद का मूल और वंश दोनों था। और इसलिए वो उस पहाड़ी पर एक ठुकराए हुए राजा के जैसे बैठा हुआ पुकार रहा था, यरूशलम, यरूशलम, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है। यह क्या था वहाँ पर पीछे? यह मसीह था जो पुकार रहा था। जब दाऊद ने भजन संहिता को लिखा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे पैरों और हाथों को छेदते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, और मेरे पहराव पर चिट्ठी डालते हैं। यह मसीह था जो दाऊद में से होकर बोल रहा था। यह सही बात है, वह वचन का प्रकटीकरण था। मसीह आया ताकि उन बातों को पूरा करे जो नबियों के द्वारा बोली गई थी, क्योंकि वचन नबियों के साथ था। उसने पिछली रात को उपदेश में कहा कि वो आया ताकि जो नबियों ने उसके बारे में कहा था वो उसे पूरा करे, क्योंकि उनके पास वचन था, और एलिय्याह परमेश्वर का नबी था, उस दिन का वो वचन था। तो शूनेमिन स्त्री नबी के साथ रुकी रही जब तक उसने आकर और परमेश्वर की सामर्थ को प्रमाणित न कर दिया, और अपने आप को उस बालक के ऊपर फैला दिया, और बालक में जीवन आ गया। अब मार्था को इसे पहचानना ही है, भले ही वो घर के कामों में व्यस्त रही हो, बर्तन धोना और इत्यादि काम, लेकिन वहाँ पर उसने अपने रंग को दिखाया। उसने दिखाया कि सचमुच में उसके अंदर क्या था। वो तुरंत ही उसे लेने के लिए चली गई। यानी परमेश्वर एलिय्याह में था, परमेश्वर को मसीह में होना था, क्योंकि उसने साबित किया था कि वो वही व्यक्ति था। आमीन, मैं इसे पसंद करता हूँ, उस दृढ़ निश्चय को। वह उसके पास जाती है, वह उसे वहाँ ढूंढती है, जब वो उसे पा लेती है। अब ध्यान रखना, ये जानते हुए कि वो कभी बदलता नहीं, यह कि परमेश्वर ने उसकी योजना को कभी नहीं बदला है। यदि वो एलिय्याह में था और मुर्दे को जिला सकता था, और वो मसीह में है, और मूर्ति को जिला सकता है, भले ही उसने इसे नहीं किया था, क्योंकि वह वही परमेश्वर है, ना ही वो अब तक कभी बदला है, बिल्कुल वैसा ही आज रात है जैसा कि वो हमेशा रहा था। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलता है। और वो जानता था कि वह जानती है कि यह वही है जो उसमें था। देखो, कुछ ही मिनटों में उसने इसे साबित किया था। जब स्त्री ने उससे कुछ तो अपने भाई के बारे में कहा, और स्त्री ने कहा, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप हैं। और उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, भले ही वो मर चुका है फिर भी वह जी उठेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। मैं हूँ, यही वो मैं हूँ है, उस जलती हुई झाड़ियों में था उस मूसा के साथ। मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं वो दीवार हूँ, मैं अब भी वो हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वह जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए फिर भी वह जी उठेगा। जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी भी न मरेगा। इस बड़े आश्वासन के बाद जो उसके पास था कि वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था, जब उसने कहा एक नबी होने के नाते वह झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए उसने जब उसने कहा मैं हूँ सो हूँ, मैं वो हूँ जो पुनरुत्थान और जीवन है, स्त्री ने कहा मैं विश्वास करती हूँ तू ही वो एक है, वो परमेश्वर का पुत्र जिसे संसार में आना चाहिए था। भले ही मेरा भाई मर गया है, वहाँ कब्र में पड़ा हुआ है, अब वह उसकी देह सड़ रही है, लेकिन अब भी प्रभु जो कुछ तू कहेगा वह पूरा हो जाएगा, यह सही है। वह केवल उससे यही सुनना चाहती थी, आमीन। ओह मार्था, हम आज रात कहाँ पर हैं? केवल वचन को बोलो, मेरा दास जी उठेगा। केवल उससे यही कहने के लिए वो रुकी हुई है। वह शायद उससे कहने के लिए आए होंगे, उसने इसे कहा है, लेकिन यहाँ वो खुद था। ओ परमेश्वर, अंधी आँखों को खोल दे जिससे कि वे देखने के लिए सक्षम हो। जब वह उसकी उपस्थिति में है, वचन को बोलता है, हमेशा ही जाहिर होता है। स्त्री ने कहा, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर इसे तुझे दे देगा, मैं बस सुनना चाहती हूँ। वह उससे शब्द को कहते हुए सुनना चाहती थी, यही सब वो सुनना चाहती थी, केवल वचन को बोले, यही वो सब उसकी आवश्यकता थी जो उससे सुनना था कि वह इसे करेगा। और उसने इसे तभी किया होता, लेकिन आप देखना, दर्शन के द्वारा जो पिता ने उसे दिखाया था कि उसे कब्र के पास खड़ा होना था। ओह, अपने विश्वास को थाम ले, परमेश्वर हर एक चीज में सही काम करता है, यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। केवल रुके रहना जब तक वह उस कब्र के पास नहीं आती है। ध्यान दें, वो उसे कब्र के पास इसे कहलवाने के लिए ले जा सकती थी। यहाँ तक वो सारी आशाएं जा चुकी है, सब कुछ खत्म हुआ है, वह मरा हुआ था, कब्र में सड़ रहा था, लेकिन केवल उसे कहलवाने के लिए यही वह सब चाहती थी। अब जब उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, उसने इसका विश्वास किया, उसने यह विश्वास किया था। अब ध्यान देना, अब उसे असंभव बातों को विश्वास करना था। जब उसने यह कहते हुए सुना मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, भले ही वो मरा हुआ है फिर भी वह जी उठेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। कहा, क्या तुम इसे विश्वास करती हो? और स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, मैं इसे विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं जिसे संसार में आना था। मैं इसे पसंद करता हूँ, मैंने इसे पहले बताया है। अब ये शायद चीजें फिर से जगह ले सकती हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक महिला से बात कर रहा था, यह एक फलाना कलीसिया से थी जिसका कुछ समय पहले मैंने जिक्र किया था। वो विश्वास नहीं करती है कि वो परमेश्वर था, वो उसकी दैविकता को विश्वास नहीं करती है, वो केवल एक नबी था, एक साधारण सा मनुष्य था। वह सच में ऐसा था, वो ये था, साथ ही वह परमेश्वर भी था। देखो, वह प्रकटीकरण था, यीशु वह देह था, वो लड़का, वो पुरुष, परमेश्वर जो उसके अंदर वास करते हुए था, परमेश्वर उसमें था। वह एक परमेश्वर मनुष्य था, वह एक मनुष्य था, फिर भी वो देह में प्रकट हुआ परमेश्वर था। जब हम यीशु को देखते हैं, हम परमेश्वर को देखते हैं। यही है जो उसने कहा था, जब तुम पिता को देखते हो मुझे देखते हो, तुम पिता को देखते हो, क्योंकि वह प्रतिबिंब था, क्योंकि वह वचन था, आमीन, जो वचन आदि में था। उसने नबियों को परमेश्वर कहकर बुलाया, क्या आप यह जानते हो? उसने कहा, तुम उन्हें परमेश्वर कहकर बुलाते हो जिनके पास परमेश्वर का वचन आता है, भला तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? क्योंकि उसी वचन ने कहा वो वहाँ पर होगा, और वो वहाँ पर वो फिर से प्रकट हुआ था, और वे इसे फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। इस महिला ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ। कहा, मैं तुम्हारा प्रचार पसंद करती हूँ, लेकिन वहाँ पर एक चीज है जो तुम बहुत ज्यादा करते हो। तो ठीक है, वो क्या है? कहा, तुम यीशु पर बहुत ही ज्यादा बड़ाई मारते हो। मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ ऐसा ही है कि वो मेरे विरुद्ध है जब वो आता है। और उस स्त्री ने कहा, मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ यही सब वो कर सकता है, यही दोष वो मुझ में पा सकता है। मैंने कहा, यदि मेरी 10,000 जुबान भी होती थी, मैं जितना बोलूं वो कम हो सकता है। ओ प्रभु जो वो है। उसने कहा, लेकिन तुम उसे परमेश्वर बनाते हो। मैंने कहा, वो परमेश्वर था, या यदि वो परमेश्वर नहीं था तो वो अब तक संसार का सबसे भरमाने वाला था। महिला ने कहा, वह एक नबी था। मैंने कहा, वह एक नबी था, यह सही है, एक परमेश्वर नबी, वचन की संपूर्णता, वह नबी जिसके पास बस वचन आया था, यही है जो उसे एक नबी बनाता है, लेकिन वो उस वचन की संपूर्णता था। और महिला ने कहा, मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ। कहा, तुम उसे दैविकता बनाते हो। मैंने कहा, वह दैविकता था। और महिला ने कहा, वह दैविकता नहीं हो सकता है। मैंने कहा, वह लेकिन वह था। महिला ने कहा, तुमने कहा तुम बाइबल पर विश्वास करते हो। मैंने कहा, मैं करता हूँ। महिला ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की बाइबल से साबित करूंगी कि वो दैविकता नहीं था। मैंने कहा, ऐसे करो, यदि बाइबल ऐसा कहता है तो मैं इसे विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वचन सही है। महिला ने कहा, उस मार्ग पर लाजरस की कब्र के पास, क्या तुम्हें संत योहन्ना 11 अध्याय याद है? मैंने कहा, निश्चय ही महिला, मुझे याद है। कहा, तो ठीक है, अब वहाँ उस मार्ग पर वो रोया था। बाइबल ऐसे बताता है वह रोया था। मैंने कहा, निश्चय ही बाइबल कहता है कि वो रोया था। कहा, कैसे हो सकता है कि वो दैविकता हो और रोया हो? मैंने कहा, वो मनुष्य था, मनुष्य और दैविकता। मैंने कहा, हाँ महिला, आप देखने से चूक गई हैं, वो एक मनुष्य था जो उनके साथ जा रहा था। उनके साथ रो, वे जो रोते हैं, यह सही बात है। उनके साथ शोक करो, वे जो शोकित हैं, वो एक मनुष्य था। लेकिन जब उसने अपने छोटे से दुर्बल शरीर के ढांचे को सीधा किया और कहा, लाजरस बाहर आ, और एक मनुष्य जो 4 दिनों से मरा हुआ था अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जो बताता है वो एक मनुष्य से बढ़कर है। यह मनुष्य में परमेश्वर था। कौन मुर्दों को जिला सकता है परमेश्वर को छोड़कर? वह पुनरुत्थान और जीवन है, यह सही बात है। उस रात समुद्र पर जब वो वहाँ पर थका हुआ उस नाव के पीछे की ओर सो रहा था, जहाँ 10,000 शैतानों ने उसे उस रात डुबाने की शपथ खाई थी, और वो पुरानी छोटी सी नाव और उस तूफानी समुद्र पर बोतल के ढक्कन की नाई ऊपर नीचे हो रही थी, उन शैतानों ने सोचा, आज हम उसे डुबा देंगे, वह सो रहा है, हम सारे झुंड को ही डुबा देंगे। ओह, वो एक मनुष्य था, थका हुआ, लेकिन जब वो एक बार जाग उठा, उसने अपने पैरों को नाव के किनारे पर रखा और ऊपर की ओर देखकर कहा, शांति, थम जाओ, और हवाओं और लहरों ने उसकी आज्ञा को माना। वह एक मनुष्य से बढ़कर था। वो एक मनुष्य था जब उसे भूख लगी थी। वो पहाड़ से जब उतरा, कुछ तो खाने के लिए, एक रोटी या कुछ तो देख रहा था, या एक अंजीर के पेड़ की ओर अंजीर के लिए देख रहा था। लेकिन जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, उसने 5,000 लोगों को खिलाया, वह परमेश्वर उस मनुष्य में था, यह सही बात है। ओ, हर एक मनुष्य जो एक पहाड़ी ऑफ द सेम में चढ़ा होगा, वो इसे विश्वास करता है। वे सारे कवि जो ये विश्वास करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। एक कवि ने लिखा, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, और मरते हुए उसने मुझे बचा लिया। गाड़ा गया, वो मेरे पापों को दूर ले गया। जी उठकर उसने हमेशा के लिए धर्मी करके आजाद कर दिया। किसी दिन वो आ रहा है। ओह, महिमामय दिन। एडी पेरोनेट, वो व्यक्ति जिसके गीत नहीं बिके होंगे, एक दिन पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे लड़खड़ा रहा था। उसने कलम को उठाया और उसने अभिषेकित गीत को लिखा। जब उसने लिखा, सारा नमन यीशु के नाम की सामर्थ को है, वे दूध गिरकर दंडवत करें, शाही मुकुट को आगे लाते हैं, तब का प्रभु करके उसे ताज पहनाते हैं। हालेलुया, निश्चय ही यही है जो हम विश्वास करते हैं कि वो था। जी हाँ श्रीमान, स्त्री को अब असंभव को विश्वास करना ही था उस दिन की आधुनिक सोच के लिए। तो क्या तुम असंभव के लिए विश्वास करते हो ताकि नए जीवन को देखो, जिससे कुछ तो घटित होता हुआ देखो? लेकिन यदि वह उसे पहचान गई थी, वह उसे वचन जानकर पहचान गई थी, जब असंभव बातें जगह ले सकती हैं, क्योंकि वह सृष्टि करता था और हर एक बात जो उसने कही थी वो उस पर खड़ा होगा, और उनके लिए सारी बातें संभव है जो विश्वास कर सकते हैं, यही उसका वचन है। लेकिन असंभव बातें प्रकटीकरण में आ गई जब परमेश्वर को उसके वचन पर लिया था। जी हाँ श्रीमान, जब परमेश्वर को उसके वचन पर लेते हैं, वे असंभव बातें प्रकटीकरण में आ जाती है। जब परमेश्वर कहता है कि ऐसा होगा, तब आप वचन को लेते हैं और क्या देखते हैं, वह असंभव बातें घटित होती है, यह निश्चय ही होंगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तक इन सारी बातों में महिला ने कहा, अब भी प्रभु, जो कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर इसे पूरा करेगा। वह जानती थी कि वह उस वचन को ले सकती है जो उसमें से आएगा। यही वो सब है जो महिला की आवश्यकता थी, उस वचन को लेना था। हाँ, उसके लिए घोर अंधकार की घड़ी थी, और उसी दौरान यीशु ने वहाँ आकर और बुलाया। ओह, क्या ही वो एक बात जो उन्होंने देखी, एक पुनरुत्थान। आइए कुछ और देखेंगे। जहाँ पर वो अंधकार की घड़ियाँ आई थी, वहाँ एक समय एक मनुष्य था जिसका नाम अय्यूब था। जो बाइबल में से एक सबसे पुराना नबी है, वह एक महान व्यक्ति था। उसने प्रभु से प्रेम किया और उसने वो सब किया जो वो कैसे करना है जानता था। शैतान ने चाहा कि उसे परखे, इसलिए उसने एक दिन परमेश्वर से कहा, हाँ मेरा मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, शैतान तुम कहाँ घूमते फिरते हो? उसने कहा, ओह मैं पृथ्वी पर इधर उधर ऊपर नीचे घूम रहा हूँ। उसने कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को सुविचारित किया है? उसके जैसा धरती पर कोई नहीं है, वह एक सिद्ध मनुष्य है। ओह उसने कहा, निश्चय ही तुमने उसे सब कुछ दिया है, उसके लिए सब कुछ करते हो, निश्चय ही वह एक महान पुरुष है, लेकिन एक बार उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं उसके स्वर को बदल दूंगा, मैं उसे तुम्हारे मुंह पर जवाब देने को लगाऊंगा। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यही उसका एक विश्वासी पर भरोसा है, क्यों? वह असीमित है, वह अनंत है, वह आदि से लेकर समाप्ति को जानता है। वह जानता था शैतान इसे नहीं कर सकता है, क्योंकि वह वचन है। वह जानता था कि अय्यूब क्या करेगा। अब ध्यान देना, अय्यूब को उसने फोड़े दिए, उसके बच्चों को मार दिया, वो सब कुछ ले लिया जो उसके पास था। उसकी सेहत जा चुकी थी, यहाँ तक उसके सांत्वना देने वाले उसके पास आए, वे उसके लिए कुछ भी न कर सके, लेकिन बस उसे एक गुप्त पापी करके दोषी ठहराया। और बूढ़ा अय्यूब ऐसे स्थान पर आ गया जब तक वो पूरी तरह से परेशान न हो गया। आपको पहले परेशानी में जाना है, आपको एक समय के अंदर जाना है जहां आप मार के अंत पर होते हैं। अय्यूब मार के अंत के अंदर पहुंच गया जब उसने कहा, श्रापित है वो दिन जिसमें मैंने जन्म लिया था, होने पाए सूर्य यहाँ तक न चमके और रात को चंद्रमा रोशनी न दे, होने पाए वो नाम कभी न बुलाया जाए। और उस परेशानी के दौरान वहाँ यीशु आता है। उसने नीचे देखा और कहा, मैं देखता हूँ एक मनुष्य के जैसे एक फूल मरता है और ग्रीष्म ऋतु में वापस ऊपर आता है। यदि एक पेड़ नीचे चला जाता है, वह पानी की भाप के जरिए से वापस ऊपर आता है। उसने सारे भौतिक जीवन को फिर से जीते हुए देखा है, लेकिन कहा, एक मनुष्य नीचे जाता है, अपनी आत्मा को छोड़ देता है, वो कहाँ पर है? वह जान गया था कि वो एक बूढ़ा मनुष्य हो गया है। उसने कहा, उसके पुत्र उसके पास आकर शोक करने लगे और वो समझ न पाया, ओ तू मुझे कब्र में छुपा लेगा और उस गुप्त स्थान में रखेगा जब तक तेरा क्रोध समाप्त न हो जाए, मेरे लिए एक समय नियुक्त कर और मुझे एक समय दे, हम चले। और इस प्रकार से वह बातें करते जा रहा था, वह उसके परेशानी के अंत पर था, क्या घटित होगा? वो पत्तियाँ जीती हैं, पेड़ों पर वापस आ जाती हैं, वे फूल फिर से वापस आ जाते हैं, हर एक चीज वापस आ जाती है, लेकिन एक मनुष्य जब नीचे चला जाता है और आत्मा को छोड़ देता है, वह परेशानी में था, वो नहीं जान सका कि उसके साथ क्या होना है और उसकी उस उम्र में क्या हो सकता है। जब उसने यह किया तब उसी दौरान यीशु आ गया। परमेश्वर ने उसके सर को आकाश की ओर संकेत किया और उसने अंतिम दिनों में यीशु को आते हुए देखा। और उस घोर अंधकार की घड़ी में जब उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, फिर भी उसने कहा, स्त्री तुम एक मूर्ख स्त्री की नाई बात करती हो, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। यहाँ पर उसकी पत्नी उससे मुड़ गई थी, उसकी कलीसिया उससे मुड़ गई थी, हर एक जन उससे मुड़ गया था उस अंधकार की घड़ी में जहाँ उसने नहीं जाना कि उसे वहाँ से कहाँ पर जाना है। उसी दौरान यीशु वहाँ पर आता है। तब वो चिल्ला उठा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वह धरती पर खड़ा होगा। यदि खाल के कीड़ों ने इस शरीर को नष्ट भी कर दिया तो फिर भी मेरी देह परमेश्वर को देखेगी, जिसे मैं अपने आप के लिए देखूंगा। उसके अंधकार की घड़ी में तब उसी दौरान यीशु आता है। जी हाँ श्रीमान, मूसा के लिए इसराइल में घोर अंधकार की घड़ी आ गई थी। वह अपने कार्य के क्षेत्र में बिल्कुल ठीक था। उसने परमेश्वर से वहाँ झाड़ियों पर मुलाकात किया और कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। वह आगे बढ़ा और सब प्रकार के नकलों से और यरनेस और यमरे से लड़ा जो उसके काम की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब में वह परमेश्वर के लिए सच्चाई से खड़ा रहा था और अतः उसने इसराइल को विश्वास करने को लगाया। और यहाँ वह मिस्र से बाहर आता है ऊपर प्रतिज्ञा देश की ओर जाते हुए, जहाँ परमेश्वर ने कहा था, तुम इस पर्वत पर मेरी आराधना करोगे। यह परमेश्वर का वचन था। मूसा जानता था उसे उस पर्वत पर जाना है। आमीन। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, कोई फिरौन उसे मार नहीं सकता है, कोई शैतान उसे मार नहीं सकता है, कोई भी उसे मार नहीं सकता है, उसे उस पर्वत पर आना है। आमीन। हालेलुया। मैं धर्मी महसूस कर रहा हूँ। वो उस पर्वत पर जा रहा है, वैसे ही हम हमारे महिमा के मार्ग पर हैं। कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। नहीं श्रीमान, परमेश्वर उसके वचन को प्रमाणित करने जा रहा है। मैं परवाह नहीं करता कि क्या बात जगह लेती है, वह कैसे भी इसे करने जा रहा है। जी हाँ, उसके मार्ग पर ठीक उसके कार्य के पथ पर यहाँ पर उन पहाड़ों के किनारों के बीच में उसने पीछे से कुछ सुना और वो गड़गड़ाहट को सुनता है। ये क्या है? फिरौन की संख्या में फिरौन के रथ को आते हुए हथियार से भरे हुए और भाले इत्यादि उन्हें गिराने के लिए और उन्हें रोंदने के लिए आते हैं। वहाँ पर लाल समुद्र है जो उसे रोक देता है। उसने क्या किया था? और वो परेशानी में आ गया था। वे सारे लोग चिल्लाने लगे, ओ हम अब इसी बात के लिए हैं, फिरौन हमें मार डालेगा, उसकी तलवारें हम पर चलाई जाएंगी, हमारे बच्चे यहाँ जंगल में मर जाएंगे। मूसा चिल्ला उठा, ओ परमेश्वर, और तब यीशु दृश्य पर आ गया। वो अग्नि का स्तंभ था, यह सही बात है। वो नीचे उतर आया और उसके और खतरे के बीच में आकर ठहर गया। आमीन, वो हमारा बिचवाई करने वाला है। वह ठीक बीच में खड़ा हुआ है। आमीन, एक मध्यस्था। यहाँ वो खड़ा था, वहाँ खड़ा हुआ है मिस्त्रियों के लिए घोर अंधकार। वे जो उसके बारे में कुछ तो करने की कोशिश करने के लिए आ रहे थे, वह उनके लिए चलते वक्त उजियाला था। फिर सुबह को जब हवा तेजी से बहना आरंभ हुई थी उस रात को, तब उसने क्या किया? तब वो अग्नि के स्तंभ के रूप में आ गया था। याद रखना, वह अब भी वही अग्नि का स्तंभ है। जी हाँ श्रीमान, जब वो धरती पर था उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। और उसकी मृत्यु के बाद दफनाना, पुनरुत्थान और अधिरोहण, संत पौलुस उसके दशमिक के मार्ग पर वह उस अग्नि के स्तंभ के द्वारा रोका गया था। याद रखना, वह एक इब्रानी था। उसने यह नहीं कहा होगा, उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? बड़े अक्षरों में LORD, एलोहिम, आप कौन हैं जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। आमीन, हालेलुया। वह पहला और अंतिम है, वह अब भी वैसा ही है। थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे न देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक मैं तुम में रहूंगा। वही अग्नि का स्तंभ, वही परमेश्वर उन्हीं बातों को कर रहा है, उसी प्रतिज्ञा के साथ। आमीन, अपने वचन को प्रमाणित बना रहा है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं वो हूँ जो था, वो जो है और वो जो आने वाला है। हाँ श्रीमान, जी हाँ, हमारे पिताओं ने जंगल में मन्ना खाया, उसने कहा वे हर एक जन मर गए, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा जलती झाड़ियों में, वो मैं हूँ था, वह अब भी मैं हूँ ही है, ना ही मैं था, मैं हूँ वर्तमान काल जो हर एक समय के लिए है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ठीक पीछे इस कोने में है और मसीह नीचे उतर आया था। अब बाइबल ने कहा कि और मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदा, मसीह वह अभिषेक था, वह लोगों जो परमेश्वर से बाहर आया, वह दूत। कोई भी बाइबल का पढ़ने वाला जानता है कि वह दूत मसीह था। और वहाँ पर वह जंगल में था और वह दृश्य पर आया उस रूप में जैसे उसे प्रकट होना चाहिए था। परमेश्वर की महिमा हो, वह आज उस रूप में आता है। वही मसीह उसे प्रकट कर रहा है। उसने उन्हें बताया कि वह उन्हें बाहर निकालेगा, वह इसे कर रहा था। वहाँ वह उसके वचन के साथ खड़ा रहा ताकि इसे प्रमाणित करे। फिर बाद में उसने आकर कर दिया था जैसे उसने मार्था के लिए किया। तब उसने बुलाया, उसने कहा, मूसा तू मेरे लिए क्यों दुहाई दे रहा है? इन लोगों से बातें कर कि वे आगे बढ़े। उस अंधकार की घड़ी में वो लाल समुंदर खुल गया था और वे उस ओर पार करके निकल गए उनकी यात्रा के लिए ताकि परमेश्वर वचन को पूरा करे। हाँ, मूसा के घोर अंधकार की घड़ी में, तब उसी दौरान यीशु वहाँ पर आता है। हमारे पास अब समय है और उसने मूसा को बुलाया। हम आपका एक और छोटे व्यक्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। उसका नाम याइर था। वहाँ उसमें से बहुत से लोग संसार में हैं। वह एक गुप्त विश्वासी था। उसने यीशु से प्रेम किया, उसने उसके बारे में सुना था, उसने उस पर विश्वास किया था, लेकिन आप देखना वह एक संस्था के साथ पहले से जुड़ चुका था। जी हाँ, वो बस बाहर नहीं आ सका था और इसे स्वीकार किया था। उसने उसका विश्वास किया था लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया था, तो वो अविश्वासियों के साथ जुड़ गया था। लेकिन उसने असल में इसे विश्वास किया था। आप जानते हैं, जब एक मनुष्य उस दशा में आ जाता है, कभी कभी परमेश्वर उसे बल परीक्षा में लेकर आता है। इस परेशानी में जब हम सचमुच हमारे रंग को दिखाते हैं कि हम सचमुच में क्या हैं, तो वो वहाँ पर था। वह अविश्वासियों के साथ जुड़ चुका था और उसने अपने नाम को उस किताब में लिखवा दिया था और इत्यादि, और वो एक याजक था और इसलिए वो शायद स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसका भोजन का साधन था। इसलिए लेकिन उसने फिर भी यीशु पर विश्वास किया था। एक दिन उसकी छोटी लड़की बीमार हो गई। ओ प्रभु, वो कोई संदेह नहीं, वो मनुष्य यदि इस तरह डॉक्टर को उसने बुलाया होगा, डॉक्टर आकर बालक को देखा होगा। उसका बुखार बढ़ता और बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह बहुत ही गर्म हो गई और इत्यादि। वह अंत में मृत्यु की कगार पर पहुंच गई थी। वह परेशानी में था, उसे बस नहीं जान पाया कि क्या करना है। अब उसने सोचा, यदि मुझे केवल वो मिल जाए, वो जहाँ कहीं भी हो। अब रात के समय होने तक वो कभी नहीं रुका था, जैसे निकोदेमुस ने किया कि उससे एक व्यक्तिगत बातचीत को करे। यह कार्य में आने का समय था, समय आया था कि कार्य में आ जाए, और तब उसे कार्य में आना ही था। और मैं सोचता हूँ भाइयों बहनों, अब भी ऐसा ही है, समय आया है कि कार्य में आ जाए, समय आ गया है कि विश्वास करें या विश्वास ना करें। यह विभाजित करने वाली रेखा हर पुरुष और स्त्री के लिए आती है, यह हर एक बालक के लिए आती है। कभी कभी जब आप उस रेखा से निकलते हैं, वहाँ एक ही चीज बचती है, जो है न्याय। जब आप दया और न्याय के बीच में होकर निकलते हैं, जब आप उस रेखा को पार करते हैं, याद रखना, वो परेशानी में था, वो नहीं जान पाया कि क्या करना है। वहाँ पर उसके याजक खड़े थे, वे सारे रब्बी उसके चारों ओर खड़े हुए थे, उसकी संगति उसके साथ थी, वे सारे उसकी छोटी लड़की को मरते हुए देख रहे थे। डॉक्टर वहाँ बाहर अपने हाथों को बांधे हुए खड़ा था, उसके हाथ को मिलाते हुए कहा, मैंने उसे हर एक दवा को दिया जो मैं जानता था, और फिर भी देखो, यह यीशु था जो हर समय कार्य कर रहा था। यीशु इसे एक उद्देश्य के लिए कर रहा था, ताकि उस छोटे व्यक्ति के रंग को बाहर निकाले। कुछ समय के बाद मैं उसे देख सकता हूँ कि वो जाकर टोपी को लेकर पहनता है और उसके याजक के वस्त्र को पहनता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है वो नीचे नदी की ओर है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ओ प्रभु, वह उतना दूर चला गया है। उस परेशानी की घड़ी में उसे एक निर्णय को लेना था, उसके बच्चे को मरने देना, या वह जानता था कि वह वचन का प्रकटीकरण था। वह एक याजक था और उसने वचन को पढ़ा था, और वह जानता था कि वो परमेश्वर का प्रकटीकरण था, परमेश्वर मसीह में था, खुद को संसार के साथ मेल मिलाप करा रहा था। वह ये जान गया था, और उसे इस बात के लिए दबाव डाला गया था, उसे गलती को करना था, उसके बच्चे को मरने देना या उसका स्वीकार किया जाना। जब वह उस परेशानी में आ गया, यह उस समय पर हुआ तब उसी दौरान यीशु वहाँ पर आता है। वह उसे देखने के लिए निकल पड़ा। उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा जो भी तू कहेगा। और वहाँ रास्ते पर वहाँ एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आता है, और वहाँ पर अंधकार की बात है उसे स्वीकार करने को लगाती है कि उसने उस पर विश्वास किया है, और उसने तब खुद का सारे संस्थाओं से नाता तोड़वा दिया था, और फिर खुद को लोगों के सामने नजर में लेकर आया कि वह एक यीशु पर विश्वास करने वाला था। और यहाँ एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आता है, कहा, कोई भी कष्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी लड़की पहले ही मर चुकी है, वह कल मर चुकी है, वह पहले ही मर चुकी है, नहीं इसके साथ तुम और मूर्खता मत करना। ओह, उसका छोटा सा हृदय बंद हो चुका था, लेकिन उसने देखा और उसकी आंखें यीशु पर थी। कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा मत डरना? यदि तू परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है तो किस बात के लिए डर रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं जाऊंगा। उसने पहले ही कहा था कि वो आएगा, उसने पहले ही कह दिया था वो इसे करेगा, और यहाँ पर वो इसे कर रहा है। आमीन। उसने कहा वह अंतिम दिनों में दृश्य पर आ जाएगा और इन चीजों को करेगा जैसे उसने किए थे, जैसे हमने पिछली रात को पढ़ा और बताया, यहाँ वो इसे कर रहा है। तुम किस बारे में भयभीत हो? याद रखना, जब वो आया और उसने मृत्यु में से उसे बुलाया, वह दृश्य पर आया और मृत्यु में से उसे बुलाया। बूढ़ा अंधा बर्तिमाई एक समय उसके अंधकार की घड़ी में था। यीशु वहाँ नीचे था, फुल गॉस्पल व्यापारी के साथ सुबह के नाश्ते पर नीचे प्रबंध किया था, और उसके साथ जकई था। उसने उससे एक पेड़ पर मुलाकात की थी नीचे उस रास्ते पर, इसलिए जब वो तो ठीक है, उसने कुछ भी और प्रबंध नहीं किया होगा, मुझे पक्का है। देखा, इसलिए फिर जब वो नीचे आया और वो उसके साथ था, जकई उसके साथ गया था। बूढ़ा अंधा बर्तिमाई जब वो छोटा लड़का था, तब से लेकर वो अंधा था, इसलिए उसने सोचा कि यीशु शायद उस फाटक से बाहर आएगा, और वो इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद उसने बहुत शोरगुल सुना, और बहुत से लोग वहाँ से आने लगे थे, और उसने याजक से कहते हुए सुना, हे तुम वहाँ पहाड़ी पर जा रहे हो, क्या हमने सुना है कि तू मुर्दों को जिलाते हो? हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी उनकी भरी हुई कब्रें हैं। यदि तू मसीहा होगा तो तू यहाँ पर आकर उन मुर्दों को जिलाएगा। आप जानते हैं, यही वो शैतान है, आज भी जीवित है। देखो, धार्मिकता के रूप में उसी तरह से देखा, यदि तू मसीहा है, हम तू मुर्दों को जिलाएगा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी भरी हुई कब्रें हैं। आ, और ओह, हर कोई चिल्ला रहा था, एक चीख रहा था, नबी को होसाना, कोई एक ऐसा चिल्ला रहा था वैसा या इस तरह से, और बहुत ही गड़बड़ थी। इस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने सोचा, ओह, मैं उससे चूक गया, वो नीचे वहाँ पर आया है, और मैंने सोचा कि वो यहाँ से आएगा, मैं गलत स्थान पर बैठा हूँ, और उसे चिल्लाना था। उसने सोचा यदि वो वचन है, वो परमेश्वर है, वह इसे सुन लेगा, इसलिए ओ यीशु तू दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। उस परेशानी की घड़ी में वह पुकार उठा। अब यीशु यदि आप इसे ध्यान देंगे, वो यरीहो पर था जहां उन्होंने कहा कि वो बैठा हुआ था। जहां पर यीशु था वह 150 यार्ड की दूरी पर था। हजारों की संख्या में लोग उसके इर्द गिर्द थे। वो उस व्यक्ति की पुकार को नहीं सुन पाया, नहीं, लेकिन उसने इसे महसूस किया, वह रुक गया था। मैं एक रात को इस पर प्रचार करना चाहता हूँ और तब यीशु रुक गया। ओह, और तब यीशु रुक गया। ओह, लेकिन जब यीशु रुक गया यह क्या था? उसने उसे पुकारा, गुरु आया है, चिंता मत करो। चेलों ने कहा वो तुझे बुलाता है, वह तुम्हें बुला रहा है। उस भीड़ में से उसने उसे बुलाया। अब वह उसी बात को कर रहा है। क्या ये आपके अंदर जा रहा है? समझे, वो गुरु आया है और वह तुम्हें बुला रहा है, और वो अंधे मन से उजाले की ओर बुला रहा है, अंधकार से उजाले में, और उसने उसे बुलाया, मृत्यु से जीवन के लिए पार हो गया। गुरु आया है और वह तुझे बुलाता है। और जब उसने उसे बुलाया, उसने उसकी दृष्टि को वापस लौटाया। वह छोटी स्त्री जो लहू की बीमारी के साथ थी, एक समय वहाँ ऊपर पहाड़ी पर उसने अपने सारे पैसे डॉक्टरों पर लगा दिया था, कोई संदेह नहीं। उस स्त्री ने सारे पशुओं को बेच डाला था, उन्होंने खेती को बेच डाला था और इसे गिरवी रखा था। उन्होंने सारी चीजों को डॉक्टर पर लगा दिया था, उसमें से उसका कोई भी भला न कर सका। वह निरंतर और बदतर होती चली गई। वो लहू नहीं रुका, निरंतर बहता और बहता जा रहा था। वह गंभीर और गंभीर होती गई। और एक दिन वह उस पहाड़ी पर ऊपर बैठी हुई बुनाई कर रही थी, जहां वो रहती थी। उसने नीचे घाटी में देखा और उसने एक नाव को देखा। हर एक जन दौड़ना आरंभ करता है। नबी को होसाना, उसने उसके बारे में सुना था। विश्वास सुनने के द्वारा आता है। अब उसने कहा मैं वहाँ नीचे जाकर और उसे देखूंगी। और जब वो वहाँ नीचे चलकर गई और उसने पहले दृष्टि की जो परमेश्वर का वचन देह में प्रकट हुआ था, वहाँ उसके बोलने और देखने के बारे में कुछ तो अलग ही बात थी, जिससे वो जान गई कि वो वही है। हाँ श्रीमान। ओह, यदि मैं केवल उसका ध्यान किसी तरह से भी आकर्षित कर सकूं, यदि मैं बस किसी तरह से भी उसे छू लूं। और वह घुसकर भीड़ में से होती हुई और उसके वस्त्र को छू लिया। अब याद रखना, उसने उसकी उंगली को महसूस नहीं किया। नहीं श्रीमान, क्योंकि फलिस्ती के वस्त्र लंबे ढीले होते हैं। और वह पत्रस ने कहा हर एक जन ने तुझे छुआ है। उसने कहा लेकिन यह कुछ अलग प्रकार का छूना था, मैं निर्बलता को अनुभव करता हूँ। यीशु आ गया था, स्त्री के पैसे खत्म हो गए थे, सब कुछ चला गया था, लेकिन उस अंधकार की घड़ी में जब लहू नहीं रुका और डॉक्टर इसे नहीं रोक पाए, यीशु आ गया। और उसने क्या किया था? उसने स्त्री को बुलाया, उसने यहाँ वहाँ देखा जब तक उसने उसे पा न लिया, और उसने कहा तुम्हें लहू बहने का रोग है, लेकिन वह रुक गया है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। गुरु आया है और वह तुम्हें बुलाता है। वह आ चुका है और उसने बुलाया है, उसने उसे वापस सेहत के लिए बुलाया। वो छोटी स्त्री जो कुएं पर थी, जिसके लिए हम पिछली रात को बोल रहे थे, सारी आशाएं जा चुकी थी। शायद हो सकता है उसके पांचवें पति ने उसे छोड़ दिया था और उसके छठवें पति को उसी रात को लिया था, और वो उसके बारे में थोड़ी संदेह में थी। नैतिक रूप से वह खत्म हो चुकी थी। वो एक सच्ची महिला होना चाहती थी। वो कोई संदेह नहीं, वह बाइबल को पढ़ती थी और वो उसी दौरान वहाँ पर जा रही थी। लगभग 11 बजे वहाँ पर वो जा रही थी। वो प्रातः को नहीं आ सकती थी जब धर्मी स्त्रियाँ वहाँ पर आती थी, और वे पानी को भरकर और अपने सिर पर घड़ों को लेकर और वापस चली जाती, और इसलिए वह नहीं आ सकती थी, न ही उनके साथ मिल सकती थी। उनका उनसे उस दिन में अलगाव था। सही और गलत एक साथ मिश्रित नहीं हो सकते हैं। चरित्रहीनता उसके स्थान पर बनी हुई थी, इसलिए वो बाकी की स्त्रियों के साथ नहीं आ सकती थी। वे उसे नहीं आने देते थे, इसलिए उन सबके पानी के भरने के बाद वह अच्छी तरह से आ सकती थी। और तब वो अपने सिर पर इस घड़े को लेकर वहाँ पर आती थी, कोई संदेह नहीं। वह साथ ही यह सोचती जा रही थी, अब जिस मनुष्य से मैंने विवाह किया है या जिसे मैंने पिछली रात्रि को थामा है, मैं उस पर संदेह करती हूँ। वह एक ऐसा पुरुष है जो बेवकूफी की हरकत को करता है। मैं तो उसके बारे में जानती भी नहीं हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिला है। मैं समाज से बाहर हूँ, मैं उन कलीसिया में नहीं जा सकती हूँ। वे नहीं, केवल उनकी ओर देखती हूँ। मैं नहीं जानती कि क्या करना है। मैं परेशानी में हूँ और मैं बाइबल को पढ़ती आ रही हूँ। निश्चय ही किसी दिन वो नबी दृश्य पर आ जाएगा। अब मैं जानती हूँ कि उन्होंने दावा किया है वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, और यह ऐसा होगा। हो सकता है 100 वर्ष बीत गए हों, 1000 वर्ष बीत गए हों, हम हजारों वर्ष से उसके लिए देखते आ रहे हैं और यह अब तक कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए हम अब उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। हर एक चीज ऐसे ही है। ओह, नहीं, हमारे पास कलीसियाएं और इत्यादि है, हमें इस तरह की कोई भी बात की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो साथी वहाँ पर ये सोचते हुए जा रही थी, आप जानते हैं जब आप उसके बारे में सोचते हैं, यही है जब वो आपके लिए उपस्थित होता है, जैसे पिछली रात को जब वे अपने इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। जब स्त्री ने उन बातों को सोचा, उसने एक मनुष्य को कहते हुए सुना, मुझे थोड़ा जल देना। इसके बारे में क्या है, उसके घोर अंधकार की घड़ी में जब उसकी नैतिकता जा चुकी है, हो सकता है वो एक छोटी आकर्षित दिखने वाली महिला हो, इस तरह से जीने के लिए रास्ते पर आ गई हो। कभी कभी ये छोटी महिला की गलती नहीं होती है, ये उसके माता पिता की गलती होती है जो उसे इस तरह से बाहर जाने देते हैं। और वहाँ पर वो थी, हो सकता है उसके छोटे घुंघराले लंबे इस तरह से नीचे बाल लटक रहे हो, वो समाप्त हो गई थी। उसी दौरान वो जा रही थी थकी हुई, और किसी के साथ बचपन से लेकर उसका कोई लेना देना नहीं था। हो सकता है उस स्त्री के पीछे एक बहुत लंबी कहानी हो। कुछ भी हो, मैं एक बात को जानता हूँ, उसने बाइबल को पढ़ा था और उसने बाइबल पर विश्वास किया था, और वहाँ उसके हृदय में एक छोटा सा बीज रखा हुआ था, कहते हुए यदि यह कभी घटित होगा मैं इसे जान जाऊंगी। वह इस बात के लिए पहले से ठहराई गई थी। वहाँ पर खड़े हुए उस बूढ़े यहूदा की ओर देखना, वह किस तरह से बर्ताव कर रहा था, जो उसने किया यह उसके हृदय के निचले हिस्से में कालापन था, वो उजाला उसके कामों पर चमक रहा था, लेकिन उसके हृदय में उसने इसे विश्वास नहीं किया था। और यहाँ पर वो था, देखो वो उजाला उस पर नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ पर वो स्त्री विश्वास करती हुई, उसने इसे विश्वास किया, लेकिन उसका जीवन अंधकार में हो गया था। जब उजाला चमका, इसने अंधकार को निकाल दिया, लेकिन जब उजाला यहाँ पर उस पर चमका, यहाँ पर इसने पूरी तरह से अंधकार में कर दिया। यही फर्क है। देखो उस स्त्री ने एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया था। उसने उस स्त्री से कहा, जब यीशु ने उसे बताया कि उसके कितने पति थे, उसने क्या हुआ था, वह एक तरह से उत्तेजित हो गई थी, वह परेशान हो गई। उसने कहा, श्रीमान मैं ये मान लेती हूँ कि आप एक नबी हैं, मैं जानती हूँ कि जब मसीहा आएगा वह इन बातों को करेगा। तब उसने उसे बुलाया मैं ही वो हूँ, वह जो तुझसे बात करता है। उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे पहचान लिया, उसने उसे पापों से एक जीवन के लिए बुलाया, और उसका नाम बाइबल में है, और आज उसे अमरहार जीवन मिल चुका है। वह आपको उसी तरह से बुला सकता है, क्योंकि वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो जी हाँ, उसकी नैतिकता जा चुकी थी, लेकिन अब भी वह जानती थी कि वो परख सकता है। वो जान गई थी कि उसे मसीहा होना था। फिर जब यीशु ने कहा, मैं वो हूँ, वो यह जान गई थी। एक समय चेले वहाँ बाहर नाव पर थे, सारी आशाएं जा चुकी थी। उस तूफान में वे बिना यीशु के वहाँ दूर चले गए थे, और तूफान बिल्कुल वैसे ही था जैसे ये लाजरस के घर पर था। सारी आशाएं जा चुकी थी, वह पुरानी छोटी नाव के अंदर पानी भर गया था, और वे चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे, और हो सकता है प्रार्थना कर रहे थे और करते जा रहे थे, और बिजलियां चमक रही थी, और नाव पानी से भर गई थी। वो नाव के खंभे नीचे गिर रहे थे, पतवार टूट गई थी, और वे एक दूसरे को पकड़कर पुकार रहे थे। और वास्तव में उस अंधकार की घड़ी में तब उसी दौरान यीशु वहाँ चलकर आया, लेकिन उन्हें वो एक छाया के जैसा दिखाई दिया, वह डरावना दिखाई दिया, जैसे एक आत्मा हो, और वह डर के मारे चिल्ला उठे। आज यही वो मामला है, यीशु आपके अंधकार की घड़ी में आता है, और आप इससे डरते हैं, आप नहीं जानते यह क्या है। उन्होंने नहीं समझा वो क्या था, उन्होंने कहा, ओह यह तो एक भूत है, वह चिल्ला रहे थे, और तब उसने उन्हें बुलाया, कहा, डरो मत, यह मैं हूँ। इस घोर अंधकार की घड़ी के दौरान यीशु आता है उनकी मदद करने के लिए, इसी तरह से वह हमेशा ही करता है। घोर अंधकार की घड़ी में वो आता है, तब यीशु ने आकर और खुद को जाहिर किया और उनके लिए आया। पतरस ने कहा, यदि यह तू है तो मुझे पानी में आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ जाओ। आप क्या जानते हैं मित्रों, जल्द ही वो इस अंतिम दिनों में उनके लिए आएगा। अब क्या ही ये अजीब सी बात नहीं है कि कलीसिया फिर से इस अंधकार की घड़ी में आ चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ तो कहने जा रहा हूँ, यह कोई एक सिद्धांत नहीं है, मैं केवल भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप जानते हैं क्या घटित हुआ है, यह जल्द ही एक ऐसे स्थान पर आ रही है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना कि सारी संस्थाएं उस दुनियावी संगठन में जुड़ने जा रही है। यदि वह नहीं जुड़ती हैं, तो उनके पास संगठन से कोई सहायता नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर एक बहिष्कार होना है, और कोई भी इन कलीसियाओं में नहीं जा सकता है। और किसी भी कलीसिया में जाता है तो जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी कलीसिया का चिन्ह नहीं होता है, आप खरीद और बेच नहीं सकते हैं। आप इसे वैसे ही देखेंगे जैसा ये था, इसलिए यह फिर से होने जा रहा है, पशु के निमित्त एक छाप। और कलीसिया वो समझ रही है ये आत्मिक लोग हैं, और आप जो पेंटिकॉस्ट लोग हैं कैसे भी इसे पहचान रहे हैं, आपने इसे अनुभव करना आरंभ कर दिया है। जब आपकी कलीसियाएं, बहुत सी पेंटिकॉस्टल संस्थाएं, मुझे आपका नाम ले लेना चाहिए, लेकिन आप ठीक अभी जानते हैं कि वे इसके अंदर आ रहे हैं, उन्होंने साक्षी को दिया है कि वे थे। और जब आप ऐसा करते हैं, आप यह होने के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप ऐसा करने पर अपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के सुसमाचार शिक्षा को गंवाने जा रहे हैं, आप ऐसा करने पर आप बाइबल के सिद्धांत को खोने जा रहे हैं, और वे सदस्य इसके लिए नहीं खड़े होंगे। पहले तो सच्चे फिर से जन्म पाए हुए मसीह मर जाएंगे, उन्हें वचन के द्वारा चेतावनी मिली है, वे जानते हैं कि ये बात आने वाली है। जी हाँ श्रीमान, और क्या ही अजीब बात नहीं है। और ठीक इस घोर अंधकार की घड़ी के दौरान तब यीशु वहाँ पर आता है और उन्हें बुलाता है, कहा डरो मत, ये मैं हूँ, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ अपने वचन को जाहिर करने के लिए हूँ। जैसे वो तब था वैसे ही वो अभी है, उसने कहा वो इसे करेगा। ओ प्रभु, गुरु ने आकर और आपको बुलाया है, बहुत से यहाँ बीमार लोग हैं, कोई संदेह नहीं कि वे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और डॉक्टर ने बताया है तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, आप हो सकता है घोर अंधकार की घड़ी में होंगे, लेकिन याद रखना गुरु ने आकर और आपको बुलाया है। और किसी दिन वो गुरु आकर और हरेक के नाम को पुकारेगा जिनका नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा है। यदि आपका वहाँ पर नहीं है तो अभी उस पर आ जाएं, क्योंकि वो आकर और पुकारेगा, यहाँ तक कि उन्हें जो कब्र में हैं उसकी आवाज को सुनेंगे और जीवन के लिए आगे आ जाएंगे। वो गुरु आएगा और आपको बुलाएगा, और जबकि वो आज बुला रहा है, उत्तर देना और उस दिन के लिए तैयारी करना, यह मेरी आपके लिए सलाह है। इस युग की प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा की है कि वो यहाँ पर होगा, जो काम उसने किए वह फिर से करेगा, और अब फिर से वो गुरु आया है और आपको बुलाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। मेरे पास यहाँ पर 6 पन्ने और रखे हुए हैं, लेकिन मैं अब उस पर नहीं जाऊँगा। आइए अपने सरों को झुकाएं। मैंने आपको वायदा किया है कि मैं आपको जल्दी से जाने दूंगा, और लगभग यह पहले से ही 45 मिनट हो चुके हैं। स्वर्गीय पिता, ओ प्रभु, इसे फिर से घटित होने दीजिए। यह सारी बातें जो मैंने कही है, यीशु आकर और तुझे बुलाता है, वह क्या करता है जब वो आता है? वो बुलाता है, और इसे फिर से होने दीजिए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा आज रात लोगों के बीच में आ जाए प्रभु, यीशु आत्मा के रूप में आज रात को वो आकर और अपने आप को प्रकट करें और अपने आप को जाहिर करें। जैसे वे लोग किस तरह उन्होंने विश्वास किया, हम भी विश्वास करेंगे प्रभु। यहाँ पर बहुत से हैं, हो सकता है उन्हें कभी भी यह मौका नहीं मिला हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए आज रात इसे फिर से प्रदान करेंगे, क्योंकि हम इसे परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यही सही है बहन, लेकिन इसी के साथ आप आगे बढ़ना, यह सही है, ठीक, आप आगे बढ़ें। ओह, बहुत ही जल्दी से हर एक जन, क्या आप विश्वास करते हैं वह आ चुका है, वह आया है? क्या वह अब भी बुला सकता है जब वो आता है? यदि आप अभी केवल विश्वास करें, यदि आप बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर इसे प्रदान करेगा। अब देखें, मेरे पास यहाँ प्रार्थना की पंक्ति को बुलाने के लिए समय नहीं है, मैं उन्हें आज रात वहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। वो गुरु आ चुका है, वो इस अंतिम दिनों में उसके वचन को पूरा करने के लिए आया है, और जो वो तब था वही आज है, जो उसका प्रकटीकरण या जो पहचान तब थी ये आज है, क्योंकि वो अब भी परमेश्वर का वचन है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? और परमेश्वर का वचन ही विचारों को जांचने वाला है, हृदय को परखने वाला है, और जिस तरह से उसने तब किया वह उसी तरह से हमेशा ही करता आया है, वह अब भी वैसा ही है। यदि वह ठीक अभी वैसा ही करता है तो आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या यह आपको उस पर विश्वास करने को लगाएगा? आप लोग अब जो बाहर हैं, मुझे पहले देखने दे, और देखूंगा यदि कोई वहाँ पर है जिसे मैं जानता हूँ। यहाँ कई तो बैठा हुआ है जिसे मैं जानता हूँ, हर कहीं पर ऊपर यहाँ जो मुझे जानता हो अपने हाथों को उठाए। आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, और आप बीमार हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं सोचता हूँ हर एक जन, तो ठीक है, अब आप विश्वास करें, आप केवल पूरे हृदय से विश्वास करें, संदेह न करें, भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप शांत बैठ जाएं और यहाँ वहाँ न ताकें, कृपया ऐसा न करें, समझे? आप एक प्राण, शरीर और आत्मा हैं, और आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा सचमुच में संकोचशील है। कितने लोगों को याद है, बहुत वर्ष पहले वो पवित्र आत्मा जब मैंने यहाँ पर आकर और आपको बताया था, जब मैंने लोगों के हाथों को पकड़ा, उन्होंने मुझसे कहा था यह परख कर और फिर आगे की बात को बताना है। आपको यह याद है, ये बात याद है। लेकिन उन्होंने कहा तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने को लगाते हो। आपको वे दिन याद है, बहुत वर्ष पहले की बात है, आपको उसे विश्वास करना है। मैंने एक मनुष्य को देखा है, मैं सोचता हूँ ये यहाँ नीचे था, उस दूसरी सभा में ठीक वहाँ पर बैठा हुआ था, और पवित्र आत्मा मैं उसे देखते आ रहा हूँ। जब मैं प्रचार कर रहा था, वह एक अपाहिज व्यक्ति था, उसके बाहों के नीचे बैसाखियाँ थी, और जैसे ही जब मैंने पुकार करना आरंभ किया, शैतान उसके पास आ गया, जो एक काली छाया थी, और मैंने इसे खुद अपनी आँखों से देखा। वह उठकर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। वह हमेशा के लिए अपाहिज रहेगा, देखना, और इसलिए वह ठीक वहाँ पर चंगा हो जाता था यदि वो केवल देखा। लेकिन बस मैं नहीं जानता क्यों, मैं सोचता हूँ उसने केवल उस शत्रु की बात को ध्यान दिया। लेकिन यदि आप खड़े होकर और उन छाया को देखते हैं, उन चीजों को उस रूप में देखते हैं जिस तरह से वे हैं, और उन्हें देखते हैं कि वह कैसे करते हैं, देखा, ऐसे होना है। अब मैं चंगाई नहीं दे सकता हूँ, वो मनुष्य जो आपको बताता है कि वो आपको चंगाई दे सकता है, वो मनुष्य गलत है। आप पहले से चंगे हो गए हैं, लेकिन इसे यीशु मसीह की उपस्थिति को पहचानना है। अब यदि मार्था जानती थी कि यदि वह उसे फिर से देख सकती है, जो उसकी इच्छा रही थी, क्योंकि वह प्रकट हुआ वचन था, क्या हम आज रात इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं? इसे विश्वास करने के लिए निश्चय ही हमें करना चाहिए। वह आया है, वह आ चुका है, वह पवित्र आत्मा के रूप में आ चुका है, यही वो है। अब आप केवल प्रार्थना करें। देखो यहाँ पर, यदि मेरे पास यहाँ पर कोई तो खड़ा हुआ है ठीक यहाँ मेरे पास में, बस प्रार्थना करते रहें। देख रहा हूँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यह सारी इमारत में है, आपको केवल इसे देखना है। आप यह नहीं कह सकते हैं, कहिए भाई ब्रैनम, नहीं श्रीमान, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर आपको सपने में मेरे बारे में सपना दे सकता है। आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप इसे अपने आप से नहीं कर सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं, भाई ब्रैनम, अब मैं आपके सपने के लिए सपना देखूंगा। नहीं, आप यह नहीं कर सकते हैं, ना ही मैं एक दर्शन को देख सकता हूँ। कभी किसी ने आपको एक सपना जो दिया है, यही वो एक है जिसे इसे करना है। इसी तरह से यह एक दर्शन के द्वारा होता है। मैं एक मनुष्य को ठीक यहाँ पर अंतिम कतार पर देखता हूँ, जिसे गठिया रोग है। यदि वो अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करेगा, परमेश्वर उसे गठिया रोग से चंगाई देगा। क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान, वो इसे करेगा? वो वहाँ पर बैठा हुआ है जो मेक्सिको का रहने वाला है, अंतिम कतार में बैठा हुआ है। क्या इसे तुम विश्वास करोगे? तो ठीक है श्रीमान। वो महिला जो आपके पास बैठी हुई है, उसे भी गठिया का रोग हुआ है। क्या आप विश्वास करती है महिला, परमेश्वर आपको चंगा करेगा? क्या इससे आवाज गूंज रही है? मैं डरता हूँ लोग इसे नहीं सुन पा रहे हैं। क्या आप करती हैं? अच्छी बात है। उस दूसरी छोटी महिला के बारे में क्या है, जो ठीक उसके पास ही बैठी है? वह एक पेट की समस्या से पीड़ित है। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर आपकी पेट को चंगाई देगा? महिला, उसने उस चंगाई को पा लिया है। जब मैं उस उजाले को नीचे उतरते हुए देखता हूँ, इसका मतलब यह घटित हो चुका है। जी हाँ, वहाँ पर था वो गोल चक्करदार घूमते हुए, यही इसे करता है। देखा, जब वो विश्वास को पा सकता है, देखा, बहुत सी बातें वह नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास अविश्वास था। यहाँ एक महिला बैठी हुई प्रार्थना कर रही है, ठीक यहाँ पर वह डरी हुई है, उसे डरा हुआ होना चाहिए। उसको बहुत ही गंभीर तरह से कैंसर की समस्या है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपके कैंसर के बारे में या किसी और चीज के बारे में बता सकता है? मेरी ओर देखें, वहाँ पर बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखना, मैं यह इसके लिए कह रहा हूँ, हमारी ओर देखें। अब हाँ, आप यहाँ से नहीं हैं, आपका घर यहाँ नहीं है, आप उस स्थान से हैं जो पोर्टर बिल्ले कैलिफोर्निया कहलाता है, यह सही है। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? वो जानता है, आपका नाम श्रीमती विंथम है, यह सही है। अब विश्वास करें और कैंसर आपको छोड़कर चला जाएगा, यदि आप विश्वास कर सकती हैं तो। यही सब परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास नहीं करते हैं? कुछ लोग यहाँ इस भाग में हैं, क्या आप विश्वास नहीं कर सकते हैं? गुरु ने आकर और आपको बुलाया है, वह आपको मृत्यु से जीवन के लिए बुला रहा है, बीमारी से अच्छी सेहत के लिए। यहाँ पर ठीक पीछे एक मनुष्य बैठा हुआ है, सिर को झुकाकर प्रार्थना कर रहा है। वह वास्तव में अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वह किसी और के बारे में प्रार्थना कर रहा है। यह एक लड़की है, यह उसकी बेटी है। क्या विश्वास करते हैं श्रीमान, आपके पैरों में कोई तकलीफ है, आपके घुटनों में तकलीफ है? यह सही बात है, रोने की आवश्यकता नहीं है, यह वही है जो आपके पास खड़ा हुआ है। आपकी बेटी एक अस्पताल में है, क्या ऐसा नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करते हैं? गुरु आया है और उसे बुलाता है, उसका पिता होने के नाते आप विश्वास करेंगे? आप करेंगे? होने पाए वो आज रात उससे भेंट करे और आपसे भेंट करे, यह समाप्त हो जाए। यहाँ पर एक छोटा लड़का, छोटा सा भूरे चेहरे का लड़का है, वह एक चमड़ी की बीमारी से पीड़ित है और उसे अस्थमा है। एक छोटा सा मैक्सिकन लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है, वो यहाँ से नहीं है, वह सन जोस से है। क्या आप विश्वास करते हैं पुत्र? एक और चीज, आपके पिता जो यहाँ आपके साथ हैं, वो एक सेवक है, यह सही बात है। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर मुझे बता सकता है आपका नाम क्या है? क्या यह आपको विश्वास में वास्तव में मजबूत करेगा? आपका नाम रुबेन है, अब विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वो गुरु आया है और आपको बुलाता है। ओ पापी, बीमार व्यक्ति, क्या तुम गुरु को एक मनुष्य जाति में प्रकट होते हुए विश्वासियों के बीच में नहीं देखते हो? वो यहाँ पर आया है ताकि उसके विश्वास करने वाले बच्चों के लिए चंगाई को दे दे। वह आया है ताकि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाए, जो पीछे हटे हुए हैं, जो कलीसिया के सदस्य हैं। गुरु आया है और आपको बुलाता है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या आप इसे ठीक अभी आपकी आवश्यकता के लिए विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं तो अपने हाथों को उठाकर और कहें, मैं मेरी आवश्यकता के लिए विश्वास करता हूं। तब अपने पैरों पर खड़े होकर और इसे स्वीकार करें। वो गुरु आया है और आपको बुलाता है। आप जो कोई भी हैं, आपकी जो भी पाने की आवश्यकता है, वो गुरु आया है और आपको बुलाता है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह छोटी महिला शहर के अंदर चली गई और कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे बताया कि क्या गलत था। आप शहर के अंदर नहीं गए, आपने खुद ही आकर और इसे देखा है, इसलिए गुरु आता है और आपको बुला रहा है। अपने हाथों को उठाएं और उसकी स्तुति करें और कहें, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक पीछे हटा हुआ हूँ, मुझे वापस ले लीजिए प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मुझे भर दीजिए, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई दीजिए, मैं अपाहिज हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए। गुरु आया है और आपको बुलाता है। अब अपने हाथों को ऊपर उठाकर और उसको स्तुति दें, आमीन। यहाँ पर मुझे थोड़ा स्वर देना, मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसकी स्तुति करूँगा। आप जानते हैं मैं उसकी स्तुति करूँगा? आप इस गीत को जानते हैं क्या? नहीं जानते? क्या आप विश्वास करते हैं? मैं उसकी स्तुति करूँगा, मैं उसकी स्तुति करूँगा। ओ स्तुति हो मेमने की, जो पापियों के लिए घात हुआ, उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। उससे प्रेम करते हैं? अब आप क्या उसके लिए गाना पसंद नहीं करेंगे जबकि वो यहाँ पर है? वह एक आत्मा है जो इस इमारत के चारों ओर मंडरा रहा है, वो आपके हृदय को जानता है, आपके बारे में सब जानता है। आइए उसके लिए गाएंगे अपने पूरे हृदय से। मैं उसकी स्तुति करूँगा, जब आप इसे करते हैं अपने हाथों को उठाएं, मैं अब केवल उसे स्तुति दें, उसकी स्तुति करूँगा। ओ स्तुति हो मेमने की, जो पापियों के लिए घात हुआ, ओ उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। ओ महिला जो तुम व्हील चेयर पर हो, यदि तुम ठीक वहाँ पर, थोड़ा और विश्वास करो। मैं, आइए एक बार और विश्वास करें, मैं कुछ बात पर रुका हुआ हूँ। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। स्तुति हो मेमने की जो पापियों के लिए घात हुआ, उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। अब जबकि हम इसे फिर से गाते हैं, घूमकर किसी से तो हाथ को मिलाएं। जब हम इसे गाते हैं, गाएंगे, मैं उसकी स्तुति करूंगा, आओ हम सब एक साथ मिलकर गाएं। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। स्तुति हो मेमने की जो पापियों के लिए घात हुआ, उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। ओ पापी मित्रों, या तुम अब यहाँ पर चलकर नहीं आओगे, यहाँ आओ और उसको स्तुति दो। तुम सारे लोगों जो उसे उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार करना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में जबकि संत लोग आत्मा में आराधना कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आकर नहीं खड़े होंगे? कहें, मैं आज रात उसका प्रमाण देना चाहता हूँ, मैं उसे स्तुति देना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं उससे लज्जित नहीं होता हूँ, मैं चाहता हूँ संसार जाने कि मैंने उसे उद्धारकर्ता की नाई स्वीकार किया है, ठीक यहाँ पर जब वो उपस्थित है और जब हम उसे गाते हैं। मैं उसकी स्तुति करूंगा, क्या आप नहीं आना चाहेंगे? मैं उसकी स्तुति करूंगा। ओ स्तुति हो मेमने की जो पापियों के लिए घात हुआ, ओ उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। ओह यह ठीक है महिला, आगे आ जाएं। और कौन आएगा मसीह की उपस्थिति में? आप ठीक यहाँ पर आ जाएं बहन, यहाँ खड़े हो जाएं। कोई और व्यक्ति जो उसे अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहता है, ठीक अभी जो लज्जित नहीं होता, उसने कहा, यदि तुम मनुष्य के सामने मेरे लिए लज्जाते हो, मैं मेरे पिता और पवित्र दूतों के सामने तुम्हारे लिए लज्जाऊंगा। यदि आप उससे लज्जित नहीं होते हैं और आप उसे अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, जबकि वो यहाँ पर है, आपने उसे देखा है, ये इतना सिद्ध है कि वचन इसे ज्ञात करवाता है, आ जाओ। जब वे संत आराधना कर रहे हैं, क्या आप यहाँ नहीं आना चाहेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। वहाँ एक बूढ़ी महिला आ रही है, वह बहुत ही बूढ़ी अवस्था में है, क्या आप अभी नहीं आना चाहोगे? मैं अब इसे गाएं, मैं उसकी स्तुति करूंगा। यह सही है, जवान झुंड यहाँ इर्द गिर्द आ जाएं, केवल स्तुति करें। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, इसी तरह से इसे करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे जवान लोगों। पापियों के लिए घात हुआ, ओ उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। जब वे सेवक लोग इन लोगों के पास जा रहे हैं, अब क्या कोई और भी आना नहीं चाहेगा? जो पीछे हटे हैं, क्या आप आकर और कहेंगे, मैं अपने जीवन से शर्मिंदा हूँ, वो यहाँ पर है, आप मुझे परमेश्वर के सेवक होने का विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में है, क्या आप नहीं आना चाहेंगे? उसे महिमा दें, आप उसे महिमा देने के लिए नहीं आएंगे? लोगों, क्योंकि उसके लहू ने धो दिया है। मार्था, क्या तुम आ रही हो, या क्या तुम मरियम के साथ घर पर बैठोगी? क्या तुम वापस किसी संस्था के साथ बने रहना चाहती हो और कहोगी, ओह मेरी कलीसिया इस तरह से विश्वास नहीं करती है? जब मसीह प्रकट बना था, क्या आप वापस ऐसे ही बैठकर और ये कहेंगे, या बाहर आ रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं नहीं। आज यही वो घड़ी है, याईर की बेटी की नाई मृत्यु आपके इर्द गिर्द लटक रही है, अब आ जाओ। जो पीछे हटे हैं, अब आ जाओ पापियों, अब आ जाओ। यही वो समय है, गुरु आया है और वह आपको बुलाता है, वह आपको बुला रहा है। आप कहते हैं मैं कैसे जानूंगा, वह मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। यदि वह मेरी आवाज का इस्तेमाल करके बीमारी, पीड़ाओं और इत्यादि को बताता है, क्या आप नहीं जान रहे हैं कि वो आपके पापों को भी दिखा रहा है। बाहर आ जाओ, आ जाओ। यह हो सकता है आपके लिए अब तक का आखिरी मौका होगा। एक बार फिर यहाँ पर और लोगों को होना चाहिए। मित्रों, मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता इस तरह से आपको बाहर बुलाने के लिए, यह सही नहीं है। यदि कभी आप, हो सकता है उन फरीसियों ने सोचा कि वे बच गए हैं, लेकिन वे बचे हुए नहीं थे। आप भी वैसा ही सोच रहे हैं। अब आ जाओ, निश्चय हो जाओ। नहीं नहीं, केवल इस पर बीच में अवसर नहीं आने देना। यदि वह आपके मन में थोड़ा भी संदेह है, कोई अवसर नहीं लेना। अब आगे बढ़ो, अब वह समय है, अभी जबकि वो झरना खुला हुआ है, जबकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है, गुरु आया है। वो छोटा सा संदेह ही है जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तुम संदेह कर रहे हो, इसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। गुरु आया है और आपको बुलाता है, यह सही है। केवल आते रहें, ठीक आगे बढ़ते रहें। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। क्या आप आकर और उसे स्तुति नहीं देंगे? स्तुति हो मेमने की जो पापियों के लिए घात हुआ, उसे महिमा दो तुम सारे लोगों, क्योंकि उसके लहू ने हर एक धब्बों को साफ कर दिया है। अब जबकि पापी आ रहे हैं ताकि उसे अनुरोध करें, लोग उसे स्तुति दें, जैसे हम अब इसे गाते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसकी स्तुति के लिए गाएं। अब सब एक साथ मिलकर, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। स्तुति हो मेमने की जो पापियों के लिए घात हुआ, केवल उसे स्तुति दें। आप लोग जो यहाँ पर हैं, प्रार्थना करें, उससे मांगें ताकि वो आपको क्षमा करे। यही है जो वो करेगा। गुरु आया है और आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।